बात समझ रहे हैं? किसने मारा? बच्चों ने मारा। बच्चों में जज्बा था। मैं नहीं कह रही कि हमारे बच्चे मरने मरने पे चल पड़े, उसकी तो नौबत इंशाल्लाह आएगी भी नहीं। याद रखिए, तलवार तब उठती है जब कलम नहीं उठते। जिहाद का नुक्ता आगाज कलम उठाने से होता है। जब आप इल्म हासिल करते हैं, जब आप कुरान सीखते हैं, इकरा बिस्मी पे अमल कर लेते हैं, जो कौमें अपने दीन के इल्म को पिला देती हैं, दुश्मनों को दोस्त बना लेती हैं, उनको तलवारें नहीं तोड़नी पड़ती। अल्लाह के नबी सल्लम ने अपनी ज़िंदगी में गालिबन 86 गजवात लड़े। अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी गई, 120 से 140 50 के करीब टोटल लोग मरे दोनों तरफ के। इससे कामयाब लीडर कौन होगा? आज एक छोटी सी जंग में शहरों के शहर तबाह हो जाते हैं, बस्तियों की बस्तियां डूबती हैं। वजह क्या है? कि ही वाज अ सक्सेसफुल लीडर। अल्लाह के नबी ने हम सबको ये मेथडोलॉजी दी कि तुम पहले खुद अपने दीन से जुड़ो, जब तुम अपने दीन पे अमल कर लोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे, फिर घर, फिर तुम्हारे खूबसूरत दीन का असर तुम्हारे नेबर्स पे, फिर तुम्हारे खानदान पे, फिर तुम्हारे शहर पे, जहाँ तुम्हारे बच्चे जाएंगे वो कहेंगे वो क्या खूबसूरत बच्चे, और जहाँ तुम मकाम करोगे तुम्हारे कुलीग्स कहेंगे वाह। और फिर देखना इस्लाम कैसे आता है, कैसे खूबसूरती से आता है, कि अल्लाह के नबी ने दिलों को फतह किया अखलाक के साथ, तलवार के साथ नहीं। ये जुल्म है और ये जुर्म है कि कोई ये कह दे कि आपने तलवार के जोर पे इस्लाम को फैलाया, आपने अखलाक के जोर पे फैलाया। वो बुढ़िया की कहानी आपने कई बार सुनी होगी जो अल्लाह के नबी के दुख से ही छोड़ रही थी मक्का को, कि किस तरह से आपकी वजह से वो निकल रही थी, कि यहाँ वो शख्स आ गया जो बुतों और हिबल को, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, लेकिन उसी का सामान जब अल्लाह के नबी ने उठाया और वो सारा रास्ता आपको बुरा भला कहती रही और आप उसकी बातें सुनते रहे सुनते रहे। और जब उसने आखिर में कहा कि बेटा तेरा नाम क्या है, तो कहने लगे मैं वही शख्स हूँ, मैं वही मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अगर आप वही है ना, तो फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। कि जो बंदा इतने सब्र और खुशी के साथ ये काम कर सकता है, फिर वो बुरा तो नहीं हो सकता। आज मैं और आप अपने बच्चों को ये सबक दें, दूसरों की खिदमत, बड़े छोटे का लिहाज। आप जाते हैं शॉपिंग करने, आप स्कूलों में जाते हैं, आप उनको सिखाएं कि लोगों का हाथ पकड़ो, लोगों की खिदमत करो। देखिए सूरत रात में अल्लाह ने कह दिया वाम यन फो नासु फयंकुस, जो लोगों को नफा देगा वही बचेगा। जब तक मुसलमान लोगों को नफा देते रहे, हम लीडर से वी वर द पाइनियर्स। आपको अलजबरा किसकी ईजाद है, केमिस्ट्री किसकी ईजाद है, अलबेरूनी कौन था, इब्ने खुल्द कौन था, हजारों किताबें लिखी इन्होंने, किसी ने अलजबरा पे, किसी ने डिसेक्शन पे। आज आप इन मुल्कों में आप जाइए और इनकी इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ के देखिए, ये आपको बताएंगे कि दुनिया को साइंस का इल्म मुसलमानों ने दिया, दुनिया को अलजबरे का इल्म मुसलमानों ने दिया, जिसको इल्म जराही बोलते हैं। आज के दौर में आप कह लीजिए कि तिब कह लें या डिसेक्शंस और ऑपरेशंस होना, ये मुसलमानों ने दिया। ये नाम सारे मुस्लिम ने, अलजबरा क्या है, जिब्रून से। और इसी तरह से आप देखिए कि साइंस के जो बड़े बड़े लॉज हैं, जिसके ऊपर आप रिसर्चेस कर करके चांद पे भी पहुंच गए, मुसलमानों ने दिए। जब तक हम एक्टिव थे दुनिया में भी, और दीन पे अमल था। देखिए अमल दीन पे, दिल में दीन है और दीन का असर जाहिर पे है। और दुनिया में आप काम करें, रिसर्च करें, आप पढ़ें, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन ये सोच दे के पढ़ाएं कि बेटा तुमने चांद पे इसलिए पहुंचना है के लिए यूज खिरा दीन ही कुल्ली ही, कि अगर तुम्हें चांद पे भी कोई एक नॉन मुस्लिम दिखे तो उसको जाकर इस्लाम की दावत दो, कहो कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफले होन, कलमा पढ़ लोगे फलाह पा जाओगे, मुसलमान हो जाओगे, बचोगे। हम मुसलमान तो खुशबू की एक छोटी सी डली होती है, जिधर से गुजर जाता है उस फिजा को मुअत्तर कर जाता है। हमारे नबी के सहाबा कहाँ थे, किस दौर में थे, आप याद कीजिए। रस्तों से गुजरते थे, एक दफा एक काफिला गुजरा कहीं से, नमाज का वक्त आ गया, अमीर लश्कर ने कहा कि स्टॉप हेयर, पड़ाव डालेंगे, अच्छा भी क्या होगा, नमाज पढ़ेंगे। सब ने जो भी चीजें मुयसर थी वजू किया, सफबंदी की। अब एक लीडर है और पीछे एक पूरी जमात है, वो कहते हैं अल्लाह अकबर तो वो भी कहते हैं अल्लाह अकबर, वो सीने पे हाथ बांधते तो वो भी बांधते हैं, वो रुकू में जाता है तो वो भी जाते हैं। इर्द गिर्द से बस्ती के लोगों ने ये खूबसूरत मंजर देखना शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं कि कोनों और झरोखों से निकल के देखने लग गए। वाह ये क्या, नमाज खत्म हुई पूछा ये क्या कर रहे थे, बड़ा अच्छा मंजर है, बहुत डिसिप्लिन है, कैसी सफ़े बनी तुम्हारी और कैसा तुम्हारा एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार था। कहा ये नमाज है, हम पढ़ते हैं दिन में कई बार। अच्छा जरा हमें बताओ तुम्हारा दीन क्या। उन्होंने उनको इस्लाम की बेसिक्स बताई, पूरी की पूरी बस्ती मुसलमान हो गई। इस्लाम ऐसे फैलता है साथियों। याद रखिए जब तक इस दुनिया में निकल कर हम इस्लाम का इजहार नहीं करेंगे, दूसरों को पता कैसे चलेगा कि इतना खूबसूरत दीन है। हम घर के बंद कमरों में 100 नफिल भी पढ़ लेंगे, हम अपने फराइज के साथ तहज्जुद और तरावी का एहतमाम भी कर लेंगे, लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगे तो हमारा इस्लाम लोगों को नहीं दिखेगा, कभी नहीं पता चलेगा इस्लाम कितना खूबसूरत है। आज के दौर के मुसलमान का मसला ही है, घर का मुसलमान, घर से बाहर जैसा देश वैसा भेस। हरम में जाएगा, मक्का में जाएगा, मदीना में जाएगा, सिबगत अल्लाह ही व मन अक्सन मिन अल्लाह की सिबगा, इस रंग में रंग जाता है। वहीं से वापसी की फ्लाइट जब यूरोप के ट्रांजिट लॉन्ज में होती है, हाल हुलिया बदल के लोग बैठते हैं। ये मेरी अपनी आंखों देखी बात, अल्लाह मुझे यहाँ बैठ के झूठ का मौका ना दे। अभी रिसेंटली 2 दफा उमरे का मौका मिला, 1 महीने के फर्क से। वही साथी जो पूरा ट्रिप साथ देखे रखे गए, इधर उधर नजर पड़ती है, साथ बैठे तो जहाज में वही थे जिसमें हम वहां थे, और जो ही एक स्टॉप ओवर आता है, आपको बताइए जब सऊदीया से आप कहीं भी जाते हैं तो बीच का स्टॉप ओवर कहाँ होता है, वो कोई गैर मुल्की होता है, और वहां से जब दोबारा जहाज में बैठ रहे हैं तो पहचानने नहीं जाए। अल्लाह की कसम मेरा दिल जितना उस वक्त कटा कि वो सारी उम्रे की खुशी और जो वहां स्पिरिचुअलिटी थी वो सब आंखों से बह गई। ऐसे मुसलमानों की फिर अल्लाह क्यों सुने जिनको इतना कॉम्प्लेक्स है अपने ऊपर। देखिए आप, मैं आपको मिसाल दूंगी, आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे भी माफ कर दें, लेकिन आज के दौर में ऐसी बातें करने और सुनने की जरूरत है। मैं आपके पास इधर आई, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मेहमान मैं भी मेहमान, हमें इन्होंने बुला लिया, और यहाँ आते ही अगर आप में से कोई एक दूसरे को देखे कि ये मेरे कपड़े पहन के आ गई है, ये तो मैंने वहां के रखा था अपना जोड़ा, ये क्यों पहन के आ गई, कैसी इज्जत रहेगी। कितना भी खूबसूरत सूट या सूट मैंने जो पहना है, अगर आप में से किसी का होता और मैंने आपसे पूछे बगैर जैसे भी लगा लीजिए आपका मैंने पहन लिया, आपको मेरा ये अच्छा लगता? आप कहते मेरे पूछे बगैर मेरे कपड़े, और कुछ नहीं है तो आपको एक एहसास से बर्तरी जरूर होगा कि देखा मेरा सूट ज्यादा अच्छा था ना जो इन्होंने अपना उतार के पहन लिया, अब आप इसको लीजिए मुसलमान पे। जब मुसलमान बाहर निकले तो गैरों का रंग ढंग इख्तियार करे तो क्या वो इज्जत करेंगे? वो ऊपर से तो आप कहेंगे यस सर यस बॉस, और अंदर से हंसेंगे देखो इनको भी हमारा रंग अच्छा लगता है। अल्लाह के नबी मदीना में गए, आयशा सिद्दीका आपकी मांग निकालने लगी जो साइड पे निकालती थी इधर, तो आपने कहा आयशा इधर नहीं निकालो बीच में निकालो, कहा अल्लाह के नबी आगे तो कभी ये बात ना हुई, मक्का में तो आप उधर निकालते थे, कहा इसलिए कि मैं यहाँ आया और मैंने जीवस को देखा है वो साइड पे मांग निकालते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उन जैसा लगूं, ना हराम ना मकरू ना कोई उसका कोई उजर ना कोई, सिर्फ मैं अल्लाह के दुश्मन जैसा दिखना नहीं चाहता। तो आयशा उनकी मुखालफत के लिए बीच में निकाल दो, आपको भी जिससे मोहब्बत ना रहे आप ही उसकी भी चीजें उतार के फेंक देते हैं, मंगनी टूटती है सब कपड़े जोड़े वापस ले जाओ हमने नहीं पहनने, हमें इनसे बू आती है, हमें इनसे दुख याद आते हैं। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो और उनके दुश्मनों के रंग ढंग अच्छे लगे, उनके कपड़े अच्छे लगे, उनके तौर तरीके अच्छे लगे? ये कहने की तो बातें नहीं है, ना ये मैं आपको सिखा सकती हूँ ना किसी और को आपको कहने का, कि ये तो दिल के सौदे हैं। जिससे प्यार होता है बंदा उसको देखना चाहता है, उस जैसा बनना चाहता है। अल्लाह के नबी से प्यार है, उनके सहाबा से प्यार है, तो क्या हम उन जैसा दिखना चाहते हैं? किसी जगह एक बड़ा खूबसूरत एक मैसेज था, पिक्चर मैसेज था कि फॉलो द सुन्ना बिकॉज इसका डिजाइनर अल्लाह सुब्हान तआला। अब आप इसको किसी भी सेंस में कहें, लेकिन जो सहाबा का हाल हुलिया था, आज हमारा अपना ही बच्चा सिर्फ उस हाल हुलिये पे आए जो आप किताबों में पढ़ते हैं, तो माँ को गम लग जाएगा, वल्लाही गम लग जाएगा, इसको क्या हो गया। सच्चा वाकया एक अपने उस्तादों में से किसी के मुंह से सुना था कि किसी महफिल में खवातीन थी बड़ी उम्र की भी आ रही थी, कोई पार्टी थी, एक आई बैठी दूसरी बैठी हाल चाल है, एक खातून आई तो लोगों ने उनसे पूछा सुनाओ क्या हाल है, आप तुम्हारे बेटे का क्या हाल है, तो ये कहती मैं समझी कि बीमार होगा, ये कहेंगे अब काफी बेहतर है, ये कहती मुझे तजस्सुस हुआ कि पूछूं भी क्या हालात है, बेटा बीमार है क्या? मैंने कहा खैर से क्या हो गया आपके बेटे को, कहती छोड़ो बाहर पढ़ने भेजा था, वहां पता नहीं किन तबलीगियों के हाथ लग गया, दाढ़ी रख के आ गया। और आप बेहतर कह कि अब काफी हमारे कहने पे दाढ़ी तो मुड़वाई दी है। इन नलिल्लाई राजू, आज मैं आपको वो रेफरेंसेस दिखा सकती हूँ कि यंगस्टर्स हमारे बच्चे जो दीनदारों से सवालात पूछते हैं वो क्या होते हैं। वो कहते हैं जब हम दीन पे अमल करना चाहते हैं हमारे सबसे बड़े अपोनेंट हमारे माँ बाप होते हैं। हम किसी कन्वर्ट लड़कियों से शादी करना चाहें इसलिए कि इनको सपोर्ट करना है तो माँ आ जाती है, मैंने तेरे सर पे सेरा बांधना था, मैंने तो तेरे बड़े अरमानों से रिश्ते करने थे, तू कैसे एक ऐसी लड़की से करा जो पहले काफिर थी। ऐसी लड़की को भी जानती हूँ जिसको आज तक सास सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो पहले हिंदू थी, और बेटे ने उसके साथ शादी क्यों की है कि अगर मैं इसके साथ मैं शादी नहीं करूंगा तो इसको तो पीछे ले जाएंगे इसके वाले। आज इस वक्त बच्चों की फिक्र नहीं करनी, अपनी फिक्र करें। वो कहते हैं ना कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। हमारी यंग नस्लें अब बाहर से मीडिया से अखबारों से इधर उधर से इतना कुछ सुन चुके हैं इस्लाम के खिलाफ कि अब वो भर चुके हैं, टू मच फॉर देम, उनके अंदर ग्रज पैदा हो चुका है। इस वक्त उनको अब समझ आ गया कि क्या मतलब है, हमने क्या किया है। देखिए हम पिछला दौर लेना, हमारे पेरेंट्स या चले आप में से भी कुछ ऐसे होंगे तो वो गाली सुन के भी आके अंदर रो लेते होंगे, चुप कर जो सब्र कर लो बर्दाश्त कर। आज का बच्चा सब्र नहीं करेगा क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो खुद जुल्म बन जाता है। इस वक्त अगर मैंने और आपने अपने जिंदगी के स्टाइल को अल्लाह के नबी और कुरान के मुताबिक ना किया तो याद रखिए हमारी नस्लें हमें छोड़ जाएंगी, इस्लाम को नहीं छोड़ेंगी, या फिर हमारे साथ असिमिलेट हो जाएंगी। कैन यू बिलीव इस वक्त जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं ना, यानी इतने लोगों के साथ इंटरेक्शन और उनके क्वेश्चन और सवाल आते हैं, उसी से मुआशरे की तस्वीर दिखती है, उसी से ही पता चल जाता है कि हालात क्या हो गए, इर्द गिर्द की कहानियां कि जिसमें इस किस्म के वाकयात सामने आते रहते हैं और पता चलता है कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। कि जहां माँ बाप बच्चों को अब एक और एंगल पे लेके जाना चाह रहे हैं और बच्चे किसी दूसरे एंगल पे जा रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता जब लोग हमें बुरा कहते हैं, हमें ये बात पसंद नहीं है। और फिर एक्सट्रीम्स आ गई, जब हमने उनको वो सच्चा दीन नहीं दिया ना जो देना था अमल वाला, तो फिर क्या हुआ, फिर किसी ने उनको जिहाद की कॉल दी, वो उसके साथ जिहाद पे जाते हैं, घर एक लेटर छोड़ जाते हैं, अम्मा हम जन्नत में मिलेंगे, वो भी एक हद हो गई। कुछ कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, जिस तेजी से इस वक्त जनरेशंस चेंज हो रही हैं वो आपको सुनाने लगी हूं। यानी इस वक्त मुसलमानों की जो जनरेशन है ना, सबकी नहीं है, देखिए होती किसी सोसाइटी में 5-10% है, लेकिन वो 20 तो डल गया ना, आज 5-10% है, कल 15 होगा, 20 होगा, 10 साल के अंदर वो 50% से ऊपर होगा। और वो क्या है कि मेरी माँ मुसलमान थी और मेरी दादी ये थी। कल मुझे कोई कहानी सुना रहा था किसी की और मैं सोच में पड़ गई कि हुआ क्या कि बच्ची की शादी जो की है वो हिंदू लड़के से की है, हिंदू से। मैंने कहा कन्वर्ट हो गया होगा, बड़ी अच्छी बात। कहती कहाँ कन्वर्ट किया, वो कहते इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा फिर शादी की जरूरत क्या थी, ऐसे भी रह लेते तो फर्क क्या पड़ता। कैन यू बिलीव, यानी आज के दौर में ये हालात आ गए कि माँ बाप बस दफा मजबूरियों के नाम पे गैर मुस्लिमों के साथ शादियां रचाकर मेहंदियां उपटन मंगनियां सब कुछ कर रहे हैं, क्या करें बच्चों की खुशी है। एक ये भी एक्सट्रीम है, एक ये भी एक्सट्रीम है कि मेरा फलां मुसलमान था, ये फलां था, ये था। हम लोगों ने रिसेंटली एक यूरोप में थे तो एक ट्रिप लिया सारी क्लास को लेकर, साथ हम कहेंगे तो एक कंपनी की बस हायर की जिसमें सारा ट्रिप जाना था। बस का जो ड्राइवर आया तो जब हम लोग बैठे तो ऐसी कोई बात हुई, मैंने तिलावत चलवाई और हम एक दो चीजें कर रहे थे तो किसी ने कहा कि ये बेचारा परेशान ना हो जाए, तिलावत थोड़ी सेंटिमेंटल थी। तो मैंने कहा क्यों परेशान होगा, इज मुस्लिम। कहती नहीं मुसलमान नहीं है। खैर किस्सा मुख्तसर, सारी कहानी का जो लुब्बे लुबाब था एंड पे ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ ही लिया साथियों में से किसी ने, तुम कौन हो? तो कहता कि माई दादी वाज मुस्लिम। तो तुम क्यों? कहता आई एम नथिंग, यानी मैं कुछ नहीं हूं। खैर किस्सा मैं उससे थोड़े तरीके से हमने उससे जब बात करने की कोशिश की उसको बताया तो उसने कहा कि सिस्टर्स नो आई एम वेरी फार। अब मैं हमने रास्ते में एंड पे फिर इंग्लिश का एक छोटा सा लेक्चर चलवाया कुछ इस तरह के, चलो इसको शायद फिर कभी मौका मिले। तो उसकी हालत से पता चल रहा था कि ये लॉस्ट चाइल्ड है। अब आप सोचिए जिसकी दादी मुसलमान है तो पोता खुद को कहते मैं कुछ नहीं और मुसलमान तो मैं हो ही नहीं, आप बता रहे हैं ये किस खतरे का अलार्म है।